ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के उच्च हिमालयी जिलों में बीती रात से हुई बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित। कल से मौसम में आएगा सुधार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा का अनुमान। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 14,308 विद्यार्थी हुए दीक्षित। प्राप्त ज्ञान का नेपालियों को समृद्ध और सुखी बनाने में प्रयोग करने का दीक्षांतों से प्रधानमंत्री ओली ने किया आग्रह। भारत के मोतिहारी से बारा के अमलेखगंज तक पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम आयात का हुआ परीक्षण। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। देश के उच्च हिमालयी जिलों में बीती रात से हो रही बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हिमपात के कारण दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य और यातायात क्षेत्र प्रभावित है। देश के तराई और पहाड़ी क्षेत्र में भी घने कोहरे के कारण सड़क यातायात और हवाई सेवा पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आज रात तक गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात की संभावना है। कोसी, मधेस और बागमती प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं इस साल हिमालयी जिलों में हुए हिमपात से कृषि उत्पादन में सुधार की जा रही है। इसी बीच जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कल से मौसम में सुधार आएगा। पश्चिमी वायु और न्यूनचापीय प्रणाली का प्रभाव कमजोर होते जाने के बाद कल से मौसम में सुधार आएगा और बढ़ी हुई ठंड घटने लगेगी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 14,308 विद्यार्थी दीक्षित हुए हैं। काठमांडू के त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आज आयोजित 50वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दीक्षित छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीक्षितों से सभी नेपालियों के लिए शांतिपूर्ण, सम्मानित, समृद्धि और सुखी होकर जी सकने की स्थिति बनाने के लिए प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करने का आग्रह किया। ये बताते हुए कि उपाधि प्राप्त होना ही अध्ययन पूरा होना नहीं है, प्रधानमंत्री ने छात्रों से घमंड न रखते हुए विनयशील बने रहने का आग्रह भी किया। आज ही नेपाल संवत 1145 के संदर्भ में नेकपा एमाले काठमांडू महानगर कमेटी द्वारा बसंतपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पारस्परिक सद्भाव कायम करते हुए एकताबद्ध प्रयास से समृद्धि हासिल की जा सकती है। भारत के मोतिहारी से बारा के अमलेखगंज तक पाइपलाइन से ही पेट्रोलियम आयात के लिए आज परीक्षण किया गया। पाइपलाइन विस्तार के काम पूरे होने के बाद परीक्षण के लिए पाइपलाइन के जरिए ही पेट्रोल और मिट्टी तेल आयात करना शुरू हुआ है। ये बात नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगंज के प्रमुख प्रलयंकर आचार्य ने बताई है। कानून संशोधन में ढिलाई होने के कारण संघीय सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट निर्माण का काम प्रभावित हो गया है। संघीय संपूरक तथा विशेष अनुदान संबंधी कार्यविधि संशोधन न हो सकने के कारण राष्ट्रीय योजना आयोग ने उन शीर्षकों में प्रदेशों और स्थानीय तहों से योजना और कार्यक्रम मांगने की प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया है। दूसरी तरफ आर्थिक कार्यविधि और वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन विधेयक 2081 संसद में अटके होने के कारण आगामी आर्थिक वर्ष के बजट निर्माण प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर अर्थ मंत्रालय भी असमंजस में है। आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉ शिवराज अधिकारी ने कहा कि संपूरक और विशेष अनुदान योजना और प्रस्ताव मांग करने में कुछ देरी बेशक हो, पर नई और परिष्कृत कार्यविधि अनुसार ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि काठमांडू महानगर पालिका के पूर्व प्रमुख पीएल सिंह देश के प्रजातांत्रिक आंदोलन के अथक योद्धा थे। नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति काठमांडू द्वारा स्वर्गीय सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर आज आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभापति देउवा ने ये बात कही। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
सारी नै छिटो चल्छ नि, एक
फिजियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वातावरणीय संकट के समय में डुकपा परंपरा के हरित अभियान और प्राकृतिक स्रोत के दीर्घ उपयोग संबंधी योगदान प्रशंसनीय है। डुक अमिताभ माउंटेन व्हाइट गुम्बा में आज से शुरू हुई 10वीं वार्षिक डुकपा काउंसिल को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सभाध्यक्ष दहाल ने कहा कि डुकपा परंपरा द्वारा शुरू किए गए प्रयास का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि प्रमुख दलों की सहमति में संविधान संशोधन किया जाएगा। आज कास्की की माछापुचरे गांव पालिका वार्ड नंबर 1-2 में निर्माण किए गए मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र भवन के उद्घाटन के दौरान मंत्री गुरुंग ने कहा कि संशोधन के लिए संविधान की समीक्षा की जाएगी। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की समितियों में विचाराधीन विधेयकों पर शीघ्र अनुमोदन किए जाने और रुके हुए विधेयक को मापदंड तैयार करके यथाशीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की सरकार की योजना है। देश के सामुदायिक विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के लिए राजस्वला के दौरान आवश्यक आराम कक्ष न होने के कारण उन्हें समस्या होती है। संघीय सरकार ने सभी विद्यालयों में आराम कक्ष का परिकल्पना जरूर की थी, लेकिन इस पर काम न हो पाने के कारण आराम कक्ष के अभाव में किशोरियों को राजस्वला की स्थिति में अपने घरों को जाना पड़ता है। कैलाली टीकापुर के बहुत से विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और अध्यक्ष के रूम और कुछ विद्यालयों ने खोली रहे रूम का प्रयोग किशोरियों को समस्या आने पर आराम कक्ष के रूप में प्रयोग करवा रहे हैं। हुमला की सरकेघाट गांवपालिका में निर्माण होने जा रहे 400-132 के भी सब स्टेशन निर्माण के लिए 110 रोपनी यानी 8 बीघा से अधिक जमीन अधिग्रहण की जाएगी। राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड कंपनी ने हुमला और मुगु जिलों में निर्माण होने वाले जल विद्युत परियोजना के विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण में समाहित कराने के लिए आवश्यक सब स्टेशन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन कार्यालय हुमला को अनुरोध करते ही जिप्रका हुमला उक्त जमीन अधिग्रहण करने जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर संपन्न हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पहुंचे। उनके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस बीच डॉ मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जल्द से जल्द जगह मुहैया कराने की मांग तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी और सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की इस मांग में अकाली दल भी साथ आ गई है और उसने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की है और यह विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के उच्च हिमालयी जिलों में बीती रात से हुई बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित। कल से मौसम में आएगा सुधार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा का अनुमान। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 14,308 विद्यार्थी हुए दीक्षित। प्राप्त ज्ञान का नेपालियों को समृद्ध और सुखी बनाने में प्रयोग करने का दीक्षितों से प्रधानमंत्री ओली ने किया आग्रह। भारत के मोतिहारी से बाड़ा के अमलेखगंज तक पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम आयात का हुआ परीक्षण। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।